नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्रह्म कुमारीज के फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया हैंडल्स पर। यह है हमारी लाइव प्रस्तुति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हम दे रहे हैं आप सभी को 21 दिवसीय योगा चैलेंज, और इस योगा चैलेंज में हम सभी पिछले 18 दिनों से लगातार हर दिन कुछ न कुछ योगासन सीख रहे हैं, योग के संपूर्ण आयाम को जान रहे हैं और साथ साथ कर रहे हैं राजयोग ध्यान यानी मेडिटेशन। हमारे छोटा सा प्रयास ये है कि योग एक सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है, एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, मगर एक लाइफस्टाइल है। और योग भारत की प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है, और भारत के इस प्राचीन योग को हम संपूर्ण रीति से समझकर जीवन में उसके सारे बेनिफिट्स ले सकें, इसका एक छोटा सा प्रयास ब्रह्मा कुमारीज आप सबके साथ कर रहे हैं। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज 18वां दिन है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक, जो 21 तारीख को मनाया जाएगा, हम सब मिलकर पूरे विश्व भर में योग सेलिब्रेट करेंगे। बट उससे पहले हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं, तो आज कार्यक्रम के शुरुआती हिस्से में हम भी करेंगे पहले योगासन, यानी पहले के 10 मिनट हम कुछ आसन और प्राणायामों के ऊपर अटेंशन देंगे, उसके साथ साथ अभ्यास करेंगे और फिर आज के बोध के लिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ राजयोगिनी वीणा दीदी जी जुड़ेंगे सीधे कर्नाटका से, और आज के विषयों पर वो प्रकाश डलवाएंगे और हमारे प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। अगर आप कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं दोस्तों, तो आज के विषय से जुड़े हुए प्रश्न आप उनसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट्स में आप अपने प्रश्नों को अभी से टाइप इन कर सकते हैं और दीदी जी उसके उत्तर भी हमें देंगे। आप जब भी प्रश्न लिखें तो फेसबुक या यूट्यूब कहीं पर भी आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने प्रश्नों को वहां छोड़ सकते हैं। अगर आप हमें ऐसे शाउट आउट देना चाहते हैं, हाय हेलो करना चाहते हैं, ओम शांति या नमस्कार लिखना चाहते हैं कि आप कार्यक्रम देख रहे हैं, तो वो भी शाउट आउट आप दिखा सकते हैं और स्क्रीन पर हम आपके नाम को बीच बीच में दिखाते रहेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत के लिए सीधे चलते हैं प्राणायाम, आज के प्राणायाम और योगासन को सीखने के लिए। हमारे साथ हरीश वैद्य जी जुड़ रहे हैं सीधे बड़ौदा से, जो हमारे योगाचार्य हैं। आइए करते हैं उनके साथ आज का योगासन एवं प्राणायाम।
ओम शांति, वंदे मातरम। आपके स्वास्थ्य के सुमंगल की मैं प्रार्थना करता हूं, कामना करता हूं। आज हम इकारांतक प्राणायाम के बारे में देख लेंगे। ये स्वरों के साथ जुड़ा प्राणायाम है। समझो जिनके कानों में कोई तकलीफ है, सुनने में तकलीफ है, जिनके गले में कोई तकलीफ है, जिनकी आवाज बिल्कुल बैठी बैठी सी रहती है, खिलावट नहीं है, जिन बच्चों की उम्र बड़ी हो गई है, 14-15 साल के हो गए लेकिन अभी भी उनकी आवाज स्त्रैण है, या जिन बेटियों की आवाज पौरुषीय है, फिर जिनके मन में अशांति है, ये कौन कौन कर सकते हैं, किन 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 बातों में उपयोगी है वो मैं बता रहा हूं। जिनके घर में अशांति का माहौल है, जिनके घर में टोटल नेगेटिव एनर्जी है, उस घर में ये अल्फा लेवल की एनर्जी ला देगा, सभी के मन के लेवल को अल्फा लेवल पर ला देगा। उद्गीत और ये इकारांतक प्राणायाम अगर आपने रोजाना करना शुरू कर दिया तो आपके मन की जो स्थिति है वैज्ञानिक तौर तरीकों से, वो बिल्कुल अल्फा लेवल पर जा सकती है। उसके ऊपर ये बेस्ड है। उकारांतक प्राणायाम में, माना उद्गीत प्राणायाम में, हमने देखा ऊ स्वर प्रधान होता है। जैसे कोई पशु है, गाय है समझो, वो गाय जब बोलती है इस प्रकार से आवाज आती है, कौआ जब काव काव करता है तब ऊ आता है, बिल्ली के म्याऊ में ऊ आता है, कुत्ते के भौंकने में ऊ आता है, और जब तोता बोलता है या चिड़िया बोलती है तो उनकी आवाज में ई आता है, ची ची। ये तो ऊ और ई, ये दोनों का अगर प्रास हो, देखो वो पशु पक्षी कभी बीमार नहीं होते हैं, कभी नहीं। हाँ, जो मनुष्य के पाले हुए हैं, जो मनुष्य का दिया हुआ खाते हैं, वो अवश्य बीमार होते हैं, लेकिन जो विराट में अकेले हैं वे लोग कभी बीमार नहीं होते। सुबह देखो, सुबह होते ही आपके गांव के आसपास कोई ऐसा बड़ा वृक्ष होगा, उस बड़े वृक्ष पर पूरे गांव के या तो कौवे आएंगे या तो चिड़िया आएंगी, और एक घंटे तक वो काव 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 चींची चींची करेंगे। उनकी आवाज में ही जादू है, क्योंकि वो आवाज नाभि से निकलती है। स्वर जो है नाभि से ऊ नाभि से निकलेगा, ई भी नाभि से निकलेंगे। जो बाहर निकलने के लिए जिसको किसी के मदद की आवश्यकता नहीं है वो स्वर है। और जैसे व्यंजन है प फ ब भ म, ये होष्ठीय स्वर है। फिर दंतीय स्वर है त थ द ध न। जीवा का अगला भाग दांतों के पीछे, ऊपर वाले दांतों के पीछे चिपकता है, तब त थ द ध न होता है। भीतर से गला एक दोनों को स्पर्श करता है, तब क ख ग घ बनता है। और उ अ आ ई ई उ, ये सीधे ही बाहर आते हैं। तो जो स्वर की भाषा में अगर आप रहोगे, इसलिए उद्गीत प्राणायाम के बारे में मैं बता रहा हूं आपको, आप ज्यादा करना। अभी इकारांतक के बारे में भी मैं बता देता हूं। खासकर ये कानों के बारे में बहुत फायदेकारक है, और गले के बारे में ज्यादा फायदेकारक है। ये भी ज्यादा कर सकते हो आप, मेरे साथ आप कर सकते हैं। सीधा और रीढ़ की हड्डी 90 अंश पर हो, दोनों हथेलियां उल्टी हो, आंखें बंद, आज्ञा चक्र पर ध्यान करना है, खुद को आत्मा समझना है। और मैं जब बताऊं, हाथ का ये जो भाग है वो कान की इस ढक्कन को चिपके, ये ऐसा करके बैठना है आपने, आप ये 15 बार कर सकते हैं, एक साथ 15 बार, फिर 2-5 सेकंड बाद का विश्राम करके फिर 15 बार करें, फिर 15 बार करें। आपने एक अनुभव देखा होगा, अगर आपने अभी 5 बार भी किया है तो तत्काल आपकी आवाज तीव्र हो जाएगी, तीक्ष्ण हो जाएगी, धारदार हो जाएगी। ये थोड़ा लंबे समय किया तो सबसे पहले आपका गला ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। कानों में अगर कोई सुई या हवा के बहने की आवाज आती है तो उन लोगों को इससे बहुत फायदे होंगे। ये इकारांतक प्राणायाम से अंदर ध्वनि बढ़ जाएगी, ये स्वर अपने आप रिपेयर कर देंगे। और जिनको कानों में तकलीफ है उनको एक शॉर्टकट में दूसरा एक छोटा सा प्राणायाम बता देता हूं, गुंजनात्मक उकार। आपकी हथेली राइट वाली यहां बिल्कुल शीर्षस्थ रखे, गहरी सांस ले और ओम। आप भी मेरे साथ करें, गहरी सांस ले ओम। आपने अनुभव किया, पूरा इलाका वाइब्रेट होता है, पूरा इलाका, ये सारा, ये वाइब्रेशन ही सबसे ज्यादा काम करते हैं। तो ये इकारांतक करते ही आपके घर में अल्फा लेवल रहेगा, वातावरण अच्छा रहेगा, हल्का रहेगा, झगड़े कम हो जाएंगे। समझो मनमुटाव है किसी का किसी के साथ, तो उसमें भी फायदा होगा। ये पर्दे के पीछे वाले फायदे बता रहा हूं, याद रहे। जिसको अगर अच्छा कलाकार बनना है, और जो गाने वाले लोग हैं वे लोग तो इसे अवश्य करें, सुबह गुनगुना पानी पिए और चिकने पदार्थों से बचे तो आपकी आवाज अच्छी रहेगी, और मन में अगर श्रद्धा से बैठेंगे, परमात्मा के साथ बैठेंगे, भगवान के साथ अगर आपकी आंखें जुड़ जाएगी, आंखें बंद करके आज्ञा चक्र पर आपका मन स्थिर करके करोगे तो निश्चित रूप से और भी परिणाम मिलेंगे आपको। ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा भी है। तो आप इस अनुभव को करें, इस अनुभव में डूबे और देखो स्पिरिचुअलिटी की कितनी महिमा, कितनी वैल्यू, कितना सहज ये मिलता है। अस्तु, इस संवाद का पूरा श्रेय मैं भगवान के चरणों में अर्पित करता हूं और भारत भूमि को प्रणाम करके आज के विषय के समापन किया।
बहुत बहुत धन्यवाद हरीश वैद्य जी का, जो हमारे साथ सीधे बड़ौदा से जुड़े और उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें इकारांतक प्राणायाम के बारे में सिखाया। मैं समझता हूँ प्रकृति में इन सब चीजों को हम ऑब्जर्व करते हैं, और जब हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, इन चीजों को अपने ऊपर लागू करके देखते हैं, तो उसके बेनिफिट्स तक ही देखे जा सकते हैं। विज्ञान भी यही चीज कहता है कि एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस के आधार पर ही हम किसी चीज को सत्य मान सकते हैं। और भारत के इस प्राचीन युग से अनेकों लोग विश्व भर में बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो यही प्रयास है कि हम ऐसे योग के अलग अलग बेनिफिट्स को सीखें और संपूर्ण योग को समझें। मुनि पतंजलि ने योग के अष्ट अंगों की बात की है। उन अष्ट अंगों में से हमने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इन सब चीजों पर चर्चाएं की हैं। कुछ और विषय जो इन अष्ट अंगों में से हैं, उन पर आज हम बोध भी हासिल करेंगे और ऐसे ही एक विषय पर हम प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। यानी अगर आपके पास मन में कोई भी प्रश्न है जो आज के विषय से संबंधित है, तो उसे आप आज के हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। आज हमारे साथ राजयोगिनी वीणा दीदी जी जुड़ रहे हैं, जो आज का बोध देंगे और हमारे प्रश्नों के उत्तर भी। अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है तो उन प्रश्नों को आप सीधे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालिए, उन प्रश्नों को मैं लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत भी करूंगा और उनके उत्तर भी लूंगा। तो चलिए सीधे जुड़ते हैं वीणा दीदी जी से और उनसे लेते हैं आज का बोध। नमस्कार दीदी, स्वागत है आपका। दीदी आप म्यूट पे हैं, आप कृपया अनम्यूट कर लें अपने आपको।
अभी सुनाई दे रहा
है? दोस्तों हम राजवीणा दीदी जी के साथ जुड़ रहे हैं और दीदी जी हमारे जी अभी सुनाई दे रहा है। स्वागत है दीदी आपका आज के कार्यक्रम में। दीदी हमारे दोस्तों के लिए आज बोध के एक नए विषय के रूप में आप क्या लेकर आए हैं, और आज के बोध को सुनने के लिए हमारे दोस्त भी उत्सुक हैं, तो पहले 10-15 मिनट हम आपसे बोध सुनेंगे, फिर आपसे प्रश्नोत्तर भी करेंगे। और आज का विषय क्योंकि प्रत्याहार है, हम में से बहुत सारे लोगों ने इस शब्द को पहले सुना भी नहीं है, तो आपसे जानकारी भी हासिल करेंगे और फिर इसके उपलक्ष्य में कुछ प्रश्न होंगे तो वो जरूर पूछेंगे। दोस्तों अगर आप भी दीदी जी से आज के विषय पर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। जैसे ही 10-15 मिनट का बोध हम दीदी से सुनेंगे, फिर उसके बाद दीदी से ही हम इसके उत्तर भी लेंगे, तो आप अभी से अपने प्रश्न लिखना शुरू कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का बोध। दीदी जी आज हमारे दोस्तों को आज के विषय के बारे में बताएं।
ओम शांति। योगाचार्य योगेश्वर परमात्मा को याद करते हुए इस संपूर्ण योग की यात्रा में हम आप सभी कदम आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो आज हम योग के अष्ट अंगों में से पांचवा अंग प्रत्याहार के बारे में पहले जानेंगे। प्रत्याहार शब्द प्रति आहार, ये दो शब्दों से बना है, संधि बनी है, प्रति आहार प्रत्याहार। प्रति मना यहाँ पर विपरीत, ऐसा अर्थ होता है। यहाँ पर जो प्रत्याहार की बातें बताई है, पतंजलि जी के आधार से या पतंजलि योग वाशिष्ठ इन सब के आधार से प्रत्याहार का मतलब है जो इंद्रिया बाहर के या बहिर्मुखता में है, चंचलता में है, उन इंद्रियों को अलग दिशा में माना अंतर की ओर मोड़ना, अंतर्मुखता की ओर मोड़ना, इसी को प्रत्याहार कहा गया है। वास्तव में प्रत्याहार माना अब तक शरीर के साथ आत्मा का वास होते होते शरीर की इंद्रियों के ऊपर ही ज्यादा हमारा जोर है, या यूं कहें कि इंद्रिय ही बलवान हो गए हैं। लेकिन मैं भगवत गीता के एक श्लोक के साथ आगे बढ़ना चाहूंगी, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धैः परतस्तु सः। इसका मतलब है इंद्रियों को ही बहुत बड़ा मानते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से बढ़कर है मन, मनसस्तु परा बुद्धिः मन से भी बढ़कर बुद्धि है, यो बुद्धैः परतस्तु सः इस बुद्धि से ऊपर मैं आत्मा या तुम आत्मा हो, ये श्लोक ये हमें बताता है। तो अभी हमें हम योग के अष्टांगों के बारे में जानते हुए संपूर्ण योग की ओर जो बढ़ रहे हैं, जैसे हम सुन रहे थे योगा इज अ वे ऑफ लाइफ, जैसे कि अगर हम रोज 5 सूर्य नमस्कार करते हैं तो पूरे दिन हम फ्रेश रहते हैं, ये हम सबके अनुभव है ना, पूरे दिन हम फ्लेक्सिबल भी रहते हैं, फ्रेश भी रहते हैं। तो सोचिए एक सूर्य नमस्कार के अभ्यास से एक दिन को हम संभाल सकते हैं, तो अगर हमारे पूरे जिंदगी को संभालना है, जीवन को संभालना है, तो संपूर्ण तरह से हम योग का अभ्यास अवश्य करें। तो इसके लिए प्रत्याहार के बारे में जानते हुए मन के लिए विषय विकार जो है बहिर्मुखता में पड़ते हैं, अति आकर्षण है, भौतिकता है, भौतिकता के कारण काम क्रोधादि जो विकार है, इसे विषयासक्ति के पीछे चलता हुआ मन भ्रमित हो गया है या भटक गया है। और आप सभी को पता है मन के आधार से ही, मन के स्थिति के आधार से ही हमारा मूड या हमारे जीवन हम अनुभव करते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा है मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण मनुष्य का मन ही है। तो अभी ये जो प्रत्याहार हमें क्या सिखाता है कि मन को दबाना नहीं है या मन को सप्रेस भी नहीं करना है, कंट्रोल भी नहीं करना है, लेकिन मन को ट्रेनिंग देना है। जैसे योगासन में हम अपने इंद्रियों को ट्रेनिंग देते हैं, है ना, इंद्रियों को ट्रेनिंग देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे हाथ पैर या पूरा शरीर जो फ्लेक्सिबल ही नहीं था, जकड़ा हुआ था, धीरे 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 लूजनिंग एक्सरसाइज के साथ हम अपने आप में फ्लेक्सिबिलिटी फील करते हैं। ऐसे हमारे मन बुद्धि भी जैसे कि अकड़ गए हैं, विषय विकारों के बंधन में फंसे हुए हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए मन को ट्रेनिंग देने की विधि है प्रत्याहार। इसको कहते हैं अंतर्मुखता। अंतर्मुखता का मतलब क्या है, हम आंखें बंद कर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो बाहर की दुनिया की जो भी दृश्य है कुछ समय के लिए बंद हो जाते हैं, लेकिन अगर ज्यादा देर तक हम आंखें बंद करके बैठे तो जो हमने देखा था वो आंखों के अंदर दिखने लगेगा हमें। तो स्टॉप कहाँ करता है, केवल आंख बंद करने से हम बाहरी विचारों को रोक नहीं सकते। अगर बाहरी विचारों को रोकना चाहते हैं तो मन की दिशा को मोड़ना है। जब मन की दिशा को मोड़ते हैं तो इंद्रियों को भी हम इंट्रोवर्ट कर सकते हैं, अंतर्मुख कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है, हम कई बार हठ करते हैं, हठ करके अपने इंद्रियों को या मन को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि दबा के रख दिया। सोचिए कोई भी चीज आपने दबा के रख दिया वहां सड़ जाएगा, बांस मारेगा, फिर उसे वहां से हटाने में बहुत मुश्किलात भी होगी। इसी तरह हमने अपने मन को या मन में आते हुए आने वाली ये जो विषय विकार है जिसको 5 विकार कहते हैं, जिसी को मानव के शत्रु भी मानते हैं, है ना, भगवत गीता कहती है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ एतस्यम त्यजे। लेकिन इन सब से हम ये नहीं कह रहे कि एक ही दिन में इसका त्याग हो जाएगा, या ये भी नहीं कह रहे कि पूरी तरह से छोड़ के सन्यासी बन जाओ, लेकिन इंद्रियों के ऊपर जैसे हम फ्लेक्सिबिलिटी का मान रखते, सकते हैं, या यह कहते हैं कि इंद्रिय हमारे अनुसार चले, है ना। जबान स्पेशली प्रत्याहार में जोर जबान पर दी जाती है कि आप अपने मुंह से कड़वे शब्द नहीं निकालें, आप अपने मुख से सदैव अच्छी बातें निकालें, क्योंकि हमारे सोच का हमारे बोल का ही तो प्रतिध्वनि है हमारा जीवन। लाइफ इज इको ऑफ अवर थॉट्स एंड अवर वर्बल एक्शन, है ना। इसलिए अगर हम अपने विचारों पर विचारों को ट्रेनिंग देंगे, विचारों में क्या विचार आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए इसे समझकर खुद को अंतर्मुखी करते हैं, थोड़ा सा इसमें आत्मज्ञान की जरूरत पड़ेगी। अंतर्मुखी होना माना कहाँ मन को लगाना है हमें, है ना। अंतर्मुखी होना, ये सारे दिन में हम आंखें बंद कर तो नहीं बैठ सकते ना, तो अंतर्मुखी का मतलब है मन को अंतर की यात्रा करना सिखाना। जैसे आंखें खुली हुई है तो बाहर की सोच चलते हैं, ऐसे खुली आंखें होते हुए भी अंतर के बारे में या आत्मा के गुणों के बारे में हम सोचें। हम संपूर्ण योग की बातें कर रहे हैं, संपूर्ण योगा माना योगा इज अ वे ऑफ लाइफ, ये जीवन जीने की कला है। केवल बैठ कर करना आधे घंटे के लिए नहीं, पूरी जीवन को योगी जीवन बनाना है हमें, तो पूरे जीवन को योगी जीवन बनाना माना पूरे दिन योगासन करना या प्राणायाम करना तो नहीं हो सकता, उसका भी लिमिटेशन है। तो ये प्रत्याहार हमें क्या सिखाता है, जैसे देखिए हम प्राणायाम करते हैं तो कुछ देर तक कुंभक का करते हैं, है ना, श्वास को रोकते हैं, या योगासन करते हैं जैसे कि शलभासन किए हलासन किए थोड़ी देर तक स्थिति में खड़े होते हैं। इसी तरह दिन भर में हम थोड़े से अंतर्मुखी रहे, बाह्य विचारों को मोड़कर हम अपने मन को खुद के बारे में सोचें, या अन्यों के बारे में दूसरों के बारे में सोच रहे हैं तो उनके बारे में हम बेस्ट विशेष करें, अच्छे विचार शुभकामनाएं करें। प्रकृति के बारे में हम सोच रहे हैं तो हम प्रकृति से ये सीखें कि जैसे प्रकृति सबको देती है उसी तरह हमें भी अच्छे विचारों का दान देना है। इसीलिए कहते हैं सब दानों में से श्रेष्ठ है गुणों का दान, तो सबसे गुण उठाए उनके बारे में सोचे। अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, लेकिन जो निकालना चाहते हैं उसके बारे में ज्यादा ना सोचे, जो अपनाना चाहते हैं उसके बारे में सोचे। इसलिए प्रत्याहार माना मन जहाँ चाहता है वहां ना भेजे, जैसे बच्चा जहाँ जाना चाहता है वहां उसको नहीं भेजा जाता है, बच्चे के लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है देखा जाता है और अच्छे मार्ग पर चलना सिखाया जाता है। इसीलिए कई क्या सोचते हैं कि मन एक पागल कुत्ता है या बंदर है, नहीं, मन हमारा है तो मन हमारा मन पागल कुत्ता बंदर तो नहीं हो सकता। हम मन को एक छोटे बेबी की तरह ट्रीट करें और मन को हम ट्रेनअप करें, अच्छी तरह से उसे ट्रेनिंग दे कि क्या सोचना है क्या नहीं सोचना। और इंद्रियों से भी कई बार क्या कहते हैं हम, मेरा विचार नहीं था लेकिन मैंने बोल दिया, बिना विचार के बोल नहीं निकल सकते। कब तो हमने सोचा होगा, कभी तो विचार मन में आए होंगे जिसकी रिएक्शन आज हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए प्रत्याहार का मूल बिंदु क्या है, अभी जिसको हम विषयाशक्ति कहते हैं, मन का आहार मान के चल रहे हैं हम, जीवन का आहार मान के चल रहे हैं, किसी पे टॉन्ट ताना कसना, है ना, किसी के बारे में उनकी बुराइयां गिनना, या किसी के बारे में जो बीती हुई बातें हैं उनका जो भूलना चाहते हैं उनको, जैसे कि कुरेदना, ये जो आदतों में मन फंसा हुआ है, इंद्रिय हमारे फंसे हुए हैं, जिसको भी देखते हमें बुराइयां नजर आती है, क्योंकि बुराइयों को देखने की हमने अपनी आदत बनाई है, उन आदतों को अभी बदलना है, यही प्रत्याहार का मूल उद्देश्य है। जैसे कि हमने बचपन में सीखा है ना, जैसे हम बोलते हैं वैसे ही प्रतिध्वनि हमें सुनने को मिलती है, तो सोच से हम शुरू करेंगे, इंद्रियों से शुरू करेंगे। इसलिए जीवन में संपूर्ण योग या अष्टांग योग का अभ्यास करने के लिए प्रत्याहार, अंतर्मुखी होना। अंतर्मुखी होने का अर्थ है बाहर में मन को नहीं भटकाना, अंतर की यात्रा कराना, खुद को खुद से मिलाना और खुद से बातें करना, भगवान से जरा बातें करना, दूसरों से भी अच्छे विचारों का मन से लेन देन करना। अंतर्मुखता का और एक स्पष्टता यहाँ है कि अगर किसी से हमें दुख मिला है, अपमानित हुए हैं, उनको क्षमा कर देना, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना, किसी की बातें मन में नहीं रखना, इनके कारण मुझे ऐसा हुआ, बिल्कुल नहीं। जो हमारे भाग्य में है ना, जो भगवान से हमें भाग्य मिला है, वो कोई भी हमारा भाग्य नहीं ले सकता। इसीलिए ये प्रत्याहार बहुत बड़ा अस्त्र है हमारे लिए। हम सभी जो पुरानी आदतों के पीछे ना भागे, अपना एक अलग रास्ता बनाए जो भगवान दिखाते हैं, मन के लिए जो सत्कर्म है, जैसे कि योग की परिभाषा गीता से सुनते हैं, योगा कर्मसु कौशलम, है ना। इस विधि से हम प्रत्याहार को समझे। जो अब तक हम मन का आहार, विषय वासनाएं या बाह्य शक्ति को अपना समझते थे, से छोड़कर अपनी ओर देखे, खुद को अच्छे सोचे, खुद के बारे में और दूसरों के बारे में। बहुत सुंदर शब्द है, बहुत अर्थपूर्ण भी है। अगर ये जीवन में आ जाए तो शायद हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं योग मार्ग में, और योग हमारा जीवन बन सकता है।
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आज के बोध पे आपने बहुत ही सुंदर ये प्रकाश डाला कि प्रत्याहार होता क्या है। हम अक्सर करके इन चीजों को नहीं जानते, इन शब्दों को नहीं सुनते, और आजकल क्योंकि बहुत ज्यादा हम एक मॉडर्न पेस ऑफ लाइफ में है, बहुत ही फास्ट मूविंग लाइफ में है, तो हम योगासन के एस्पेक्ट्स जितना ही योगा समझ के उसे छोड़ के आगे चले जाते हैं और इसके बारे में ज्यादा अध्ययन भी नहीं करते। एक हमारे साथी ने प्रश्न पूछा है, जब आप प्रत्याहार के बारे में बता रहे थे, आप ये कह रहे थे कि इंद्रियां जहां पर आपको खींचती हैं, वहां से आपको हटाकर चीजों को किसी चीज पर केंद्रित करना है, तो ये अक्सर देखा जाता है, बट हमारे आसपास वही चीजें सभी लोगों को करते हुए हम देखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यही चीज करने से आप जीवन में कुछ हासिल कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं। जैसे आज आप कहीं जाते हैं तो आप पार्टी में बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं भी पहनना चाहते तो भी दिखाना आवश्यक है। कुछ चीजें आपको पसंद नहीं है तो भी आप उन चीजों को इसलिए खा रहे हैं क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड है, वो कूल है। बहुत सारे लोग अल्कोहल नहीं लेना चाहते, या फिर कोई मांसाहार नहीं खाना चाहता, बट सिर्फ सोशलाइजेशन के चक्कर में, और ऑफिस की पार्टी है भाई, वहां तो अपने आप को मतलब ऐसा कहेंगे तो शायद हम अलग हो जाएंगे, हम फिट इन करने की कोशिश में हम इन चीजों को करते आ रहे हैं। तो ऐसे में कैसे इस चीज को फॉलो किया जा सकता है, क्योंकि सोशल नॉर्म्स ऐसे हैं।
वास्तविकता में बहती पानी के साथ बह जाना कोई विशेषता नहीं। जो तैरने वाला होता है वो उल्टी बह तैरना चाहता है ताकि अपनी ताकत बनाए रखे। जो आजकल सोशल नॉर्म्स हम समझ रहे हैं वो किसी मनुष्य ने ही तो बनाया है ना, अपनी सहूलियत के अनुसार। लेकिन अगर हम चाहे तो हम अपना अलग ट्रेंड भी बना सकते हैं। जैसे हम दुनिया में देखे हैं, बड़े बड़े हमारे राष्ट्राध्यक्ष रहे अब्दुल कलाम जी, कितने बड़े बड़े पार्टीज में गए, लेकिन उन्होंने कभी अल्कोहल टच नहीं किया। इवन जन्म से मुसलमान होते हुए उन्होंने नॉन वेजिटेरियन टच नहीं किया। जब उनसे हो सकता है एक आम आदमी से इतने बड़े पद तक उन्होंने अपना यात्रा तय की, तो हमारे जीवन में भी अगर हम उसकी वास्तविकता समझे, इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है। केवल दिखावा ही तो जीवन नहीं है ना, जीवन हमें जीना है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। जब ये हम समझ लेते हैं, ठीक है कपड़े तक ठीक है, लेकिन कपड़े तक भी अगर कोई कहता है मुझे कहाँ से लेना है, मुझे बहुत महंगे कपड़े ही पहनने हैं, शोरूम वाले या युक्त है, ऐसे करते हैं तो हमारी कमाई का भी प्रॉब्लम हो जाते हैं, इकोनॉमिकली भी हम बहुत प्रॉब्लमेटिक में आ जाते हैं। इसलिए योग हमें सरलता से जीना, सिंपल लाइफ के बारे में सिखाता है और सिंपल लाइफ ही मनुष्य को ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसलिए दिखावे के लिए कुछ नहीं कीजिए, जो भी करना है दिल से कीजिए। तो एक दो दिन हमारे कमेंट्स होंगे, लेकिन जो बाद में हमारी जो पैशन है ना, उसे भी फॉलो करना शुरू कर दें। ये वास्तविकता है, हम दूसरों को फॉलो ना करें, हम ऐसा लीडर बने जो दुनिया हमें फॉलो करे। ये उद्देश्य है योग का। योग के जीवन शैली का मूल उद्देश्य है हम गुलाम बन के ना रहे। भारतीय संस्कृति किसी को गुलामी नहीं सिखाती है। भारतीय सनातन संस्कृति की विशेषता है हर किसी को राजा बेटा कहकर पाला जाता है। तो राजा बन के रहे, लीडर बने, हम अपना ट्रेंड सेट करें, ना कि सेट की हुई ट्रेंड पर हम आगे चले। इसके लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में दृढ़ता की जरूरत होती है। जैसे योगासन करते हैं, पहले दिन दूसरे दिन थोड़ा तरह शरीर में दर्द होंगे, दुखेगा, अगर छोड़ देंगे तो छूट जाएगा, कंटिन्यू करते रहेंगे तो वो आदत बन जाएगा। इसी तरह आदतों को भी हमने बनाया है, तो दृढ़ता से अगर हम चलेंगे तो इन बुरी चीजों को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बना सनातन संस्कृति की अच्छाइयों को जाने, इनको ब्लाइंड फेथ ना मान के इनकी वास्तविकता को समझ के, इसके पीछे का साइंस को समझ के अगर हम चलेंगे ना, तो हमारे जीवन में कोई कठिनाई आएगी नहीं।
जी, एक और साथी ने प्रश्न पूछा है दीदी, जीवन नाम है इनका, और ये प्रश्न पूछते हैं, प्रत्याहार करना बहुत ही मुश्किल सा लगता है, क्या इसे करना संभव है, ये पूछते हैं।
जी, सब कुछ पहले मुश्किल ही लगता है। पहले दिन स्कूल गए थे, आपको याद होगा कितना मुश्किल लगता था। घर में आराम से खेल कूद के रहते थे, वहां डिसिप्लिन पालन करना होता, वो भी मुश्किल लगा। अगर आप कोई टेक्निकल स्टडीज के लिए गए, वहां भी मुश्किल आते आए। एकदम आप अपने रीजनल लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसफर हो गए, तब भी मुश्किल आते आए। आपने शादी की पहले दिन, आपको वहां भी मुश्किल आते आई होगी। कोई भी नई चीज करने में स्टार्टिंग ट्रबल तो हर एक को होता ही है, लेकिन स्टार्टिंग ट्रबल ही लाइफ का ही है। अगर पहले दिन स्कूल से डर जाते तो आज भी आप कोई पीएचडी, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बन पाते नहीं ना। इसी तरह से कोई कठिनाई नहीं है। आप ये नहीं सोचे कि एक ही दिन में सब कुछ छोड़ना है, लेकिन एक दिन 5 मिनट, एक दिन 10 मिनट मन को थोड़ा मोड़िए, एक छोटी छोटी आदतों को, जैसे कि रोड में खड़े होकर समोसे खाना, गली के तबीयत के लिए भी ठीक नहीं है, कोरोना के लिए भी ठीक नहीं है। ऐसे छोटी छोटी आदतें, समझिए आपको लगता है आज समोसा खाना है तो आज नहीं कल खाएंगे, है ना। एक दिन के लिए उसको पोस्टपोन करके देखिए, थोड़े थोड़े स्टेप बाय स्टेप प्रत्याहार बहुत आसान हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है।
कमेंट हटाओ। जी दीदी, जैसे आप ये बात कह रहे थे कि किसी न किसी दिन शुरुआत करनी ही चाहिए, एक और साथी ने ये बात पूछी है कि बहुत बार इसे प्रत्याहार करते हैं, तो जब ये बातें सुनते हैं तो ये कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये तो सन्यासी टाइप बनते जा रहे हैं, ऐसे में क्या हम नॉर्मल लाइफ में रहते हुए इसे करना ठीक होता है।
क्योंकि आजकल का जीवन दूसरों के एक्सप्रेशन या कॉमेंट पे ही डिपेंड कर रहा है। आजकल सोशल लाइफ में हम मुझे क्या चाहिए ये ज्यादा सोचते नहीं है, हम सोचते हैं सामने वाले को क्या चाहिए, उस अनुसार हम जीना चाहते हैं। हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल हमने दूसरों के हाथ में दे रखा है, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा अटेंशन दीजिए। हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल हमारे पास ही। दूसरा, हमें कोई सन्यासी नहीं बनना है। प्रत्याहार का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ त्यागना है जो नेगेटिव है, जो आपके लिए नुकसानकारक है, उसको आप छोड़ते जाइए। पहले एकदम आप बड़ी बड़ी चीजों पे नहीं चाहिए, समझिए अगर आपको पहले से कहां से शुरू करें ना। हम साथियों के बारे में अगर नेगेटिव सोचते हैं तो उसको हम पहले काम करें, ये भी तो एक प्रत्याहार का स्टेप है। खुद के बारे में इंफीरियरिटी की सोच है हमारी, उसके बारे में हम प्रत्याहार करें। या हम हमारे मुंह से ना धनाधन धनाधन बुरे शब्द निकलते हैं, थोड़ा उसके ऊपर कंट्रोल करें। छोटी छोटी बातें हैं, एकदम आप खाने पीने पे ना जाइए, एकदम सोशल ट्रेंड्स छोड़ने के लिए नहीं। जो छोटी छोटी बातें फर्क पड़ता है जीवन में, तब हमारे मन में दृढ़ता आ जाती है। और एक बात क्या है कि जो हम प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं उसको शो ऑफ ना कीजिए ना कि मैं ये छोड़ रखा है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, किसके लिए ढिंढोरा पीट रहे हैं। चुपचाप रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, बस आपका जीवन देख के ना दूसरे भी उसको फॉलो करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, एक त्याग करते हैं तो 10 ढिंढोरा पीटते हैं। यहीं से शुरू होता है लोगों का नेगेटिव कॉमेंट्स आना, फिर हम डर के पीछे आ जाते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए जो हम करते हैं खुद के लिए भी और एनवायरमेंट के लिए भी कर रहे हैं, इसलिए प्यार से करें और दूसरों के कमेंट्स को थोड़ा सा सुना सुना करें। अगर देखिए आप कंटिन्यूस मंदिर जाते हैं तो भी लोग कमेंट्स करेंगे, कंटिन्यूस योगासन करते हैं तो भी शायद इसको कोई प्रॉब्लम होगा इसलिए कर रहा है। लोगों का काम है ये सुनाना, लेकिन हमें क्या सुनना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमें क्या चुनना है उनमें से हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए पहले डिसाइड कर लेना है मुझे कैसा जीवन जीना है, दूसरों को खुश करने के लिए जीना है या मेरा जीवन है मैं अच्छी तरह से इसका आनंद लूं, क्या लक्ष्य है मेरा। एक बार सेट कर लेंगे ना तो लोगों की बातें हमारे ऊपर इतना असर नहीं करेगी।
दीदी समय को देखते हुए मैं एक आखिरी प्रश्न ले लेना चाहता हूँ। अंजू वर्मा जी फेसबुक से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और वो पूछते हैं कि ओम शांति दीदी जी, निर्गुण का मतलब क्या होता है, ये प्रश्न पूछते हैं। बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि जब हम ये प्रयास करते हैं तो हम निर्गुण बनने की तरफ जा रहे हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों के अंदर एक मान्यता होती है, तो ऐसे में निर्गुण क्या होता है आप थोड़ा एक्सप्लेन करें।
हाँ जी, हमारे देश में एक निर्गुण संस्था भी है। कई लोग सोचते हैं हमें निर्गुण बनना है, माना कंप्लीट गुण भी ना हो अवगुण भी ना हो, ऐसे हम न्यूट्रल बन जाए। लेकिन हम आप सभी जानते हैं कोई भी निर्गुण का मतलब उन्होंने जिस अर्थ से कहा, जैसे कि निर्विकारी कहा, निर्विकारी का अर्थ है विकार ना होना, इसलिए निर्गुण का अर्थ है अवगुण का ना होना। निर्गुण का मतलब गुणों का ना होना नहीं है, अवगुण का ना होना किसी को निर्गुण कहते हैं। जैसे भगवान है, गुणों का सागर है, लेकिन उसको निर्गुण निर्गुणातीत ऐसे कहकर भी उसकी महिमा की जाती है। इसका मतलब भगवान शून्य है, उसके पास कुछ नहीं है, ऐसे नहीं है। भगवान गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है। तो निर्गुण का मतलब है गुणों से संपन्न होना, सर्वगुण हमारे अंदर आ जाए, हम वैल्यूज से, वर्च्यूज से, डिविनिटी से भरपूर हो जाए, इसको निर्गुण कहते हैं। निर्गुण का अर्थ नील होना नहीं है और ये कभी हो नहीं सकता। इसलिए यथार्थ से हम ये निर्गुण का अर्थ समझे, कंपैरेटिवली ये शब्द का उपयोग होता है। जैसे मैंने निर्गुणातीत भगवान के लिए भी कहा कि इसका मतलब होता है अभी हमें चारों ओर जो गुण दिखाई दे रहे वो कोई गुण नहीं है, अवगुण ही है कंपैरेटिवली, है ना। इससे ये कम है, ये ज्यादा गुस्सा कर रहा है, ये ठीक है थोड़ा कम कर रहा है, किसी को गुणी मान के चल रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में गुण वो चीज है जिसमें अवगुण ना हो, उसी को ही निर्गुणी कहते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आज के बोध के लिए और हमारे दोस्तों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। दोस्तों समय ज्यादा नहीं है क्योंकि हम हर दिन प्रयास करते हैं कि 45 मिनट के भीतर भीतर हम कार्यक्रम समाप्त करें और संपूर्ण योग को सीखें। उसमें हमने थोड़ा समय योगासन और प्राणायाम सीखे और दीदी जी से बोध और प्रश्नोत्तर लिया और आगे वाले हिस्से में हम मेडिटेशन करेंगे। मगर दीदी जी हमारे साथ खास बोध के लिए जुड़े और लगातार दीदी जी से हमने सुना भी और उनसे हमारे प्रश्नों के उत्तर भी हमने लिए। दीदी जी का खास मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो हम सबके लिए संपूर्ण योग कार्यक्रम में उपलब्ध हुए। दीदी जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़ पाए, धन्यवाद। दोस्तों अब कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में आते हैं और अब करते हैं राजयोग ध्यान यानी मेडिटेशन आखिरी के 5 मिनट में, ताकि हम फिजिकल बेनिफिट्स तो ले ही रहे हैं, मेंटल हेल्थ का योगा पे जो असर होता है उसे भी हम समझ रहे हैं और साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग कितना कारगर काम करता है इस पर भी हमने बहुत सारी चीजें सुनी हैं। आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है, ये सारी चीजें आप फीडबैक में भी हमें लिख सकते हैं। आपके कमेंट्स को जैसे स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं इसे दिखाया जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में और करते हैं राजयोग ध्यान यानी कि मेडिटेशन।
Om Shanti. And let's sit back comfortably. आगे आने वाले कुछ देर के लिए अपने जीवन की हर समस्या को, कोई भी प्रॉब्लम है, भविष्य की कोई चिंता है, अतीत की कोई बात बुरी लगी हुई है, किसी व्यक्ति की कोई बात याद आती है, शरीर की कोई समस्या है, इन सभी बातों को कुछ देर के लिए, आगे आने वाले कुछ देर के लिए अपने मन बुद्धि की दुनिया से बिल्कुल अलग कर देना है। कुछ मिनट For coming 5 to 10 minutes, अपना पूरा attention, अपना concentration power, एक सही direction में, positive direction में use करते हैं। दिन भर जो भी सोचा, जो भी विचार किया, कोई भी प्रॉब्लम डील की, इट्स ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, बट इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट आई एम सिटिंग बैक टू मेक माई सेल्फ रियलाइज हु एम आई, मेरी शक्ति क्या है, मेरी कैपेसिटी क्या है, व्हाट कैन आई डू टू हील माय बॉडी, हील माय रिलेशनशिप, हील माय फैमिली एंड हील द वर्ल्ड। आगे आने वाले कुछ देर हर व्यर्थ की बात को, व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की डिजायर की लंबी लिस्ट, एक्सपेक्टेशंस या कोई भी चिंता, फिक्र, इन बातों की कोई जगह नहीं है। आई एम गोइंग टू चर्न द पॉजिटिविटी। I am going to realize the reality of my life. ये शरीर क्या है? This body is made up of 5 elements. एक कपड़े की तरह मैंने इस शरीर को पहना हुआ है। As long as I am present in this body, This body is alive. And the moment I leave, the body is dead. The body is no more alive. तो आखिर मैं कौन? मेरी शक्ति क्या है? Let me realize. भ्रिकुटी के बीचों बीच, एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द फोरहेड, चमकता हुआ एक दिव्य सितारा, इन आंखों से दिखाई नहीं देता, उसे अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, पानी उसे गीला नहीं कर सकता। एक अलौकिक शक्ति, सुपरनैचुरल पावर, इस शरीर के कोने कोने में एक ऊर्जा बिखेरता जाता है। ब्रेन की आर्टरीज, लंग्स, हार्ट, किडनी, लिवर, एवरीवेयर दिस पावर इज रेडिएटिंग नेचुरली। कोई इमेजिनेशन नहीं है, नेचुरली दिस पावर इज रेडिएटिंग टू एवरी कॉर्नर ऑफ माय बॉडी। और मैं एक राजा की तरह, एक मास्टर की तरह इस शरीर को यूज करती हूं टू परफॉर्म माय कर्मा। अपने मन बुद्धि संकल्प के शक्ति के आधार पर इस शरीर के कोने कोने में एक हीलिंग एनर्जी रेडिएट करती हूं। हीलिंग पावर, सुपरनैचुरल हीलिंग एनर्जी, मेरे इस रोशनी से ये आंख, ये कान, हाथ पैर, सारे इंटरनल सिस्टम्स, ये सब एक्टिव हैं। अब कुछ देर के लिए अपनी इसी वास्तविकता में स्थित हो जाती हूं मैं, आत्मा। आई एम अ वेरी सटल पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द फोरहेड। आई शाइन ब्यूटिफुली। अब कुछ देर के लिए इस शरीर को अपने मन बुद्धि और अपने संकल्पों से बिल्कुल अलग करती हूं। आई सेपरेट माई सेल्फ फ्रॉम द कॉस्ट्यूम दैट आई एम वेयरिंग और सामने ले आती हूं इस ब्रह्मांड की सबसे प्योर एनर्जी को, the highest and the purest power, Paramatma। जैसे किसी बड़े व्यक्ति का नाम लेने से ही काम हो जाता है, परमात्मा को तो याद करने मात्र से काम हो जाता है। So let me remember him for some time। उनकी शीतलता, उनकी दिव्यता, पवित्रता को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हूँ, नेचुरली समाने देती हूँ। एंड दिस पावर इज प्रोवाइडिंग मी द हीलिंग एनर्जी फॉर द बॉडी। परमात्मा की ये शक्ति जिनके साथ मेरे सर्व संबंध हैं, लाइक अ फादर, एक छत्र छाया क्रिएट करते हैं। माँ की तरह बहुत प्यार करते हैं, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह मेरे सारे सीक्रेट अपने पास रखते हैं, एक बड़े भाई की तरह मेरा बोझ उठाते हैं। इतनी खूबसूरत परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा में नेचुरली एक हीलिंग एनर्जी रेडिएट कर रही है, डिवाइन हीलिंग, और इन शक्तियों से अपने शरीर के एक एक ऑर्गन को नरिश करती हूँ मैं आत्मा। एंड आई डिसाइड टू लिव इन दिस पावरफुल कॉन्शियसनेस ऑफ हु एम आई एंड हुम डू आई बिलोंग टू। मैं कौन, मेरा कौन। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सुंदर मेडिटेशन एक्सपीरियंस के लिए। और दोस्तों, हर दिन अगर हम समय निकाल कर ये प्रयास करें कि हम अपने आप के लिए रिफ्लेक्शंस लें, अपने आप के लिए कुछ पॉजिटिव थॉट्स लें, और ध्यान से किसी भी चीज में डिस्ट्रैक्ट न होते हुए अगर हम एक चित्त होकर बैठने का प्रयास करें, तो बहुत सारी प्राप्तियां हो सकती हैं। हम अपने जीवन में एक स्थिरता देख पाएंगे। इन अभ्यासों से ये बहुत सारा काम आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में इस 21 दिवसीय योग चैलेंज का उद्देश्य यही रहा है कि हम योग के संपूर्ण आयामों को सीखें, उसको अपने लाइफ में आसानी से अप्लाई कर सकें, और ताकि हम अपने लाइफ को एक बेटर पोजिशन दे सकें, एक बेहतर दिशा देख सकें। कल 19वें दिन भी हम आपके साथ जुड़ेंगे। अगले 3 दिनों तक हमारे साथ जुड़ना न भूलें। ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू से ये विशेष प्रस्तुति आप सबके लिए रहेगी। नाम है इसका संपूर्ण योग। आज के लिए बस इतना ही। कल मुलाकात होगी। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल और फिर मिलते हैं कल। नमस्कार।